ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिका तदाल्ये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा। पुष्प लोचन शिवालय के प्रांगण में बेल्य के स्थान पे इस्कान मॉरिशस के इस क्षेत्र के भक्तों श्रीमान दामोदर प्रभु और उनके सहयोगी सारे मित्र बंधुओं ने दो दिन का हरि कथा का आयोजन किया है। आप सब पधारे हैं, आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ इस्कान संस्था की स्थापना का मुख्य मूल उद्देश्य है लोगों को सुखी करना, टू मेक द पीपल हैप्पी। जो मुख्य उद्देश्य है, क्यों हैप्पी करना, क्यों सुखी बनाना, क्योंकि संसार दुखमय है। संसार है दुखमय और हम दुखमय संसार में आ गए हैं तो अब यहां सुखी कैसे हूं। बहुत बड़ा योगदान है कृष्ण भावना अमृत संघ का, इस्कान का बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। पूरी दुनिया में लोगों को सुख, सुख कहां है? सुख है भगवान की भक्ति में, सुख भगवान की भक्ति में है, नहीं तो संसार अपने आप में दुखमय है। जिसने संसार बनाया, हमने तो नहीं बनाया ना संसार, संसार तो भगवान ने बनाया ना। तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं असुखम अनित्या, असुखम यहां सुख नहीं है, असुखम मतलब यहां सुख नहीं है, और दूसरी जगह कहते हैं दुखालयम, आलय कहते हैं समुद्र को, दुख का समुद्र है। अनित्यम सदा रहने वाला नहीं है। प्रहलाद महाराज कहते हैं मानव जन्म अध्रुवम, अध्रुवम का मतलब सदा नहीं रहेगा, ध्रुव का अर्थ होता है अटल, सदा रहने वाला, और अध्रुव का अर्थ होता है सदा नहीं रहने वाला। फिर भी अर्थदम, अर्थदम का अर्थ होता है लाभदायक। मानव जन्म है तो थोड़े समय के लिए, लेकिन बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है इसमें। अध्रुवम अर्थदम। भागवत धर्म इह, अगर भागवत धर्म का, भागवत धर्म किसको कहते हैं? भागवत धर्म किसको कहते हैं? जो भगवान ने दिया। भागवत धर्म वो जो भगवान ने दिया, उस धर्म का आचरण करने से, उस धर्म के ऊपर चलने से सुख की प्राप्ति होती है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, केवल सुख भी नहीं, सुसुख का मतलब जैसे कोई सुंदर हो उससे भी ज्यादा सुंदर हो, उसमें सुसुंदर, सुसुख का मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी। ये भागवत धर्म कैसा है? सुसुखम। और ये सुख क्या खत्म होने वाला है? नहीं नहीं, अव्ययम, ये तो खत्म होने वाला नहीं है। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वाधनम, ये तो आनंद बढ़ने वाला है। कौन सा? भागवत धर्म का। ये सुख बढ़ने वाला है। संसार में थोड़ा सुख है तो इतना बड़ा साथ में दुख है। दिखता है सुख संसार में, लेकिन है दुख। सो एक श्लोक हमने कहा भगवत गीता का, पढ़ लेते हैं। ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। 33वां श्लोक है 9वें अध्याय का, आप पाठ कीजिए हमारे साथ। किम पुनर्ब्रह्मणाः पुण्या भक्ता राजऋष्यस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। इससे पहले के श्लोकों में भगवान ने कहा कि भागवत धर्म भक्ति के रास्ते में कोई दुराचारी चले, कोई पाप योनी चले, दुराचारी का मतलब इस जन्म का बैड बिहेवियर, दुराचार का मतलब होता है बैड बिहेवियर, इस जन्म का दुराचारी, सुदुराचारी, सो दुराचारी में एक बड़ा दुराचारी हो, लेकिन मेरा भक्ति करता है अनन्य तो साधु है। फिर कहा जो पाप योनि है, मतलब पूर्व जन्म में इतने पाप किए थे कि किसी कसाई के घर में जन्म मिला, किसी यमन के घर में जन्म मिला, वो पाप योनि हो गया, किसी शिकारी निषाद के घर में जन्म मिला, या ऐसा वर्ग जो गुरु के पास शिक्षा लेने जा नहीं सकता है, जैसे स्त्री है, जैसे काम करने वाले मजदूर है, वो भी अगर मेरा शरण लेते हैं तो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। तो अर्जुन ने भगवान की ओर देखा कि हमारा क्या होगा, ये सब भी आपको प्राप्त कर सकते हैं। तब भगवान ने कहा किम पुनर्ब्रह्मणा, तो फिर ये ब्राह्मण, ब्राह्मण का अर्थ है ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो भगवान को जानता है और भगवान को जानने का अभ्यास करता है वो ब्राह्मण, जिसके जीवन में संयम है, तपस्या है, ज्ञान है। ब्राह्मण के छह काम होते हैं, छह काम ब्राह्मण के कहे गए हैं, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, और कलयुग में कौन सा यज्ञ करना, कीर्तन करना और कीर्तन कराना, ये ब्राह्मण का पहला काम है, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। और दूसरा काम क्या है, पठन पाठन, स्वयं गीता पढ़े, दूसरों को पढ़ाए। और तीसरा है दान लेना, दान देना। दान लेने का मतलब आपने कुछ अन्न दे दिया, पैसा दे दिया, प्रसाद बना लिया और वापस में आपको प्रसाद दे दिया और हरि कथा सुना दी। आपने आपने कुछ घर से पैसा दिया या ग्रेन्स दिए, चावल दिया, दाल दिया और यहां बना के प्रसाद और कथा के साथ आपको वापस दे दिया, तो दान लिया और दान दिया, ये सब तीनों काम यहां ब्राह्मण का है। सुचा बहुत पवित्र जीवन होता है उसका, ये ब्राह्मण, इनके लिए क्या पूछना। और दूसरा कौन, भक्त्या पुण्य, ब्राह्मण के बाद पुण्य, पुण्य का मतलब जिसके जीवन में पुण्य होता है, पुण्य का मतलब होता है पायस जीवन। पुण्य किसके जीवन में होता है, भागवत में पुण्य किसको कहते हैं, शुण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, जीवन में पुण्य होता है कृष्ण कथा सुनना। अभी जो आप भगवत गीता सुन रहे हैं ये आपके जीवन का पुण्य है। तीसरा कौन, भक्त्या, भक्ता, मेरे भक्त, और मेरे भक्त, भक्त कौन है, श्री प्रभुपाद ने कहा जो एक बार हरे कृष्ण जपता है वो भक्त है। तो आप जब ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस हरे कृष्णा जपला जपा तो भक्त हो गया। और कितने हो गए, पहला हो गया ब्राह्मण, दूसरा हो गया पुण्य आत्मा, तीसरा हो गया भक्त, और चौथा है राज ऋषि। राज ऋषि जैसे अर्जुन है, ये राज ऋषि है, राजा भी है और ऋषि भी है, धर्म के उस धर्म धर्म का आचरण भी करता है और राज भी करता है, शासन भी करता है। जनक आदि राज ऋषि है, महाराज युधिष्ठिर राज ऋषि है, ऐसे राज ऋषि, इन चार का नाम लेके फिर भगवान क्या कहते हैं, अनित्यम असुखम लोकम, वो जानते हैं, ये जानते हैं। कौन जानता है, ब्राह्मण जानता है, पुण्य आत्मा जानता है, भक्त जानता है, राज ऋषि जानता है क्या, ये दुनिया दुख वाली है, इस दुनिया में दुख है। और क्या जानते, अनित्यम, ये सदा नहीं रहेगी। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप क्या समझते हैं, आप इस दुनिया को कैसे समझते हैं, यह सुख मिल जाएगा। अगर आप यह समझते हैं कि यह सुख मिल जाएगा, और अगर आप समझते हैं कि हम सदा यहां रहेंगे, तो आप इन चार में से नहीं है। तो न तो आप ब्राह्मण हैं, न पुण्य है, न भक्त हैं, और न राज ऋषि हैं। और आप देखें कि बहुत से लोग ऐसे हैं इस दुनिया में सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, हम यहां सुखी रहेंगे और सदा यहां रहेंगे, क्या विचार है आपके मन में, कैसे आ रहा है ये, हाँ सब समझते, आए अगली बार बस नेक्स्ट ईयर हम सुखी हो जाएंगे, घर बन जाए तो सुखी हो जाएगा, गाड़ी आ गई तो सुखी हो जाएगा, लेकिन और दुख बढ़ता जाएगा। लेकिन जो समझते हैं कि दुनिया में सुख है ही नहीं और सदा यहां रहना नहीं है, सदा यहां रहना नहीं है, यहां से बस में पोर्ट लुइस तक जाए और कोई सीमेंट लेके जाए, ब्लॉक ले जाए और अपनी सीट के ऊपर घर बनाए तो लोग क्या कहेंगे, पागल है ना, कि उतरना है एक आधे घंटे के बाद, इसके अंदर घर बना रहा है। ऐसे जो देवलोक में बैठे हैं ना देवता, वो जब हम यहां घर बनाते हैं ना, उनका गुजरता है एक साल, तब यहां का एक दिन रात होता है, तो वो देखते हैं इनको कोई महीना एक रहना है, ये इतना बड़ा मेहनत करके 50 मिलियन खर्च करके घर बना रहे, क्या कर रही है, उनको ऐसे लगता है कि ये टाइम खराब कर रहे हैं अपना। जैसे कोई आदमी बस में बैठ के घर बनाए तो कहां कहेंगे लोग ये क्या कर रहा है। तो असल में ऐसा देख, कौन असल में कौन समझदार है, बोला सब में समझदार है भगवान शंकर। सब भगवान भोलेनाथ शंकर बहुत समझदार है, बोला क्यों, उनका एक नाम है अनिकेत, भगवान शंकर का एक नाम है अनिकेत। अनिकेत का मतलब है जिसने घर नहीं बनाया आज तक, उसको मालूम है कि ये दुनिया सदा रहेगी नहीं तो घर बना के झंझट क्यों पालने का, उसका नाम ही है अनिकेत। और भगवत गीता में भक्तों के लक्षणों में 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अनिकेत निकेत भक्तिमान में प्रियो नरह, जिसने घर नहीं बनाया वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है। देखो अनिकेत मुझे प्रिय है लिखा है, इसका अर्थ क्या है, घर नहीं बनाए क्या, नहीं, घर बनाओ लेकिन भगवान का बनाओ, मंदिर बनाओ। आप कितने दिन रहेंगे, आप जाएंगे मंदिर तो, ये देखो जिनने बनाया वो तो बेचारे चले गए होंगे, लेकिन ये आज मंदिर पड़ा है कितने को सुख दे रहा है। ऐसे अपने घर में भगवान को पहले बिठा दो, घर भगवान का मंदिर हो, आप चले जाएंगे आपके बच्चे भगवान की सेवा करते रहेंगे तो सुखी हो जाओगे। मेरा घर करके बना लिया तो आज नहीं तो कल छोड़ना ही तो पड़ेगा। हम तो कभी कहते हैं आपके घर में रहने वाला काकरोच भी बाहर जाता है ना दूसरे के घर में तो अपने घर की ओके ये मेरा घर है ऐसे बोलता है, और जो बाहर हमारे कुत्ता बंदा बैठा होता है ना वो भी दूसरे कहता है ये मेरा घर है यहां मैं रहता हूं, वो भी ऐसे कहता है मेरा है। मास्क्यूटो भी दूसरी जगह घूमने जाता है बोलता है ये मेरा घर है। तो ऐसे तो हमारी भी बुद्धि मानव की नहीं हुई ना। अनित्यम असुखम लोकम, इसके ऊपर हमारा आज विचार था कि आपको पुरंजन उपाख्यान सुनाए। आपने सुनाया कभी पुरंजन उपाख्यान? 4वें स्कंद श्रीमद् भागवत में नारद जी एक बहुत बड़े ध्रुव वंश के महाराज, ध्रुव भक्त को तो सब जानते हैं, उनके वंश में एक बहुत बड़े यज्ञ करने वाले महाराज थे, उनका नाम था प्राचीन बरहित। प्राची कहते हैं ईस्ट को और बरहित कहते हैं यज्ञ करने वाले को। उसने इतना यज्ञ किया कि जो कुछ ग्रास है घास है धरती के ऊपर बिछाया है तो पूरी धरती ढक जाए। बड़े कर्मठ राजा थे, बहुत कर्मठ राजा थे, बड़े यज्ञ करते थे। एक दिन नारद जी ने आके कहा, महाराज इतना सारा पूजा पाठ करके पशु की बलि दे रहे हो, एनिमल सेक्रीफाइस कर रहे हो, मिलेगा क्या? बोला मेरे पुरोहित कहते हैं, मेरे पंडित कहते हैं यज्ञ करो। बोला ये जो तुम ये एनिमल का सेक्रीफाइस कर रहे हो, पशु का जो बलि दे रहे हो, ये देखो, नारद ने ऐसे कहा ये देखो। उसने ऊपर देखा तो सारे एनिमल ऐसे देख रहे थे राजा प्राचीन बरहित को। बोला ये क्या करेंगे? नारद जी ने कहा ये सब तुम्हारा शरीर छूटेगा ना, तुम्हारे से बदला लेंगे, दे विल टेक रिवेंज फ्रॉम यू। हाँ, हमको तो नहीं बताया पंडितों ने। और नारद ने कहा मैं देव ऋषि हूं, आपको एक कथा बताता हूं सुनो। एक राजा था उसका नाम था पुरंजन। पुर किसको कहते हैं? पुर कहते हैं सिटी को। जो कोई सिटी होती है ना कोई शहर होता है, नगर होता है, उसको पुर कहते हैं। जैसे भारत में एक जगह है नागपुर, कानपुर, तो पुर का मतलब सिटी और रंजन का मतलब एंजॉयमेंट, जो नगर में एंजॉय करे। तो पुरंजन का अर्थ क्या हुआ, ये जो हमारा शरीर है, ये जो बॉडी है, इसको पुर कहा गया है। भगवद गीता में नौ द्वारे पुरे देही, ये नौ दरवाजे वाली एक नगरी है। नगरी मतलब एक सिटी है, इसके नौ दरवाजे हैं, सात तो इधर मुंह में पड़े, दो आंख, दो कान, दो नासिका, ये छह, और सातवां मुख, और दो दरवाजे मल मूत्र त्यागने के, एक्सक्रीशन के। इसको कहते हैं पुरन, इसको कहते हैं पुर नगर। तो नारद जी कहते हैं पुरंजन एक व्यक्ति आदमी, उसके साथ एक अज्ञात मित्र। अज्ञात मित्र का मतलब क्या है, अननोन फ्रेंड, हम नहीं जानते हैं लेकिन वो हमारा फ्रेंड है। वो भारतवर्ष में घूम रहा था तो पुरंजन ने एक बहुत सुंदर लड़की को देखा और सुंदर लड़की के पीछे पांच फन वाला सांप, फाइव वुडेड स्नेक, उसकी रक्षा कर रहा था। 11 सोल्जर इन 11 सेनापति, सेनापति मतलब कमांडर इन चीफ, सेनापति उसके रक्षा के लिए खड़े थे और पीछे बहुत आर्मी थी, सेना थी। पुरंजन ने उसको देखा, पुरंजन इसे बड़े अच्छी लगी, कहा तुम मुझसे विवाह करोगी? और पुरंजन ने कहा हां मैं तुमसे विवाह करती हूं। और पुरंजन पुरंजनी से विवाह करके और उस पुर में रहने लगा। तो प्राचीन भरित ने पूछा ये क्या कथा बता रहे हो? बोला कथा ये बताता हूं, जीव आत्मा पुरंजन है, अज्ञात मित्र परमात्मा है, हम पुरंजन, मैं हूं जीव आत्मा, केवल भारतवर्ष में और कहीं नहीं। और भारतवर्ष अभी इंडिया है, इसको नहीं समझना, पूरी धरती ओशन से जो सराउंडेड है, खारे पानी के समुद्र से घिरी हुई मतलब सराउंडेड, सारी पृथ्वी को भारतवर्ष कहते हैं। ऋषभदेव के बेटे महाराज भरत के पीछे इसका नाम भारतवर्ष है। और ऐसे आठ और वर्ष हैं, ये सब जम्बूद्वीप में आते हैं। पांचवें स्कंद भागवत में जम्बूद्वीप में नौ वर्षों का वर्णन है, उन नौ में से एक भारत है। और भारतवर्ष का आराध्य देव नर नारायण है, जो बद्री का आश्रम में रहता है। और नारद जी भारतवर्ष के भगवान का इज वर्शिप्ड, भगवान की पूजा कौन करता है, नारद करता है। और ओनली इन भारतवर्ष, केवल भारतवर्ष में मानव के जन्म दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। सो भारतवर्ष में पुरंजन ने लड़की देखी। बोला लड़की किसको कहते हैं? बोला बुद्धि, हमारा इंटेलिजेंस को कहते हैं पुरंजनी। बुद्धि लड़की है। बोला पांच हुडेड सरपेंट कौन है, पांच फन वाला सांप कौन है, पांच प्राण, प्राण सांस लेते हैं ना, प्राण अपान व्यान उदान, ये जो प्राण है हमारे अंदर सांस चल रहा है, ये रक्षा करते हैं। जब तक प्राण है तब तक जीवित है, प्राण निकल गए आदमी मर गया, तो प्राण इस शरीर की रक्षा करता है, पांच प्राण है। बोला 11 सेनापति कौन है, कमांडर कौन है? बोला एक मन, पांच ज्ञान इंद्रियां, आंख कान नाक पांच कर्म इंद्रियां, ये हाथ पांव जीभा, ये सब इंद्रियां, ये सेंसेस हैं, ये सेनापति है, इनके सहारे हम चल रहे हैं। शरीर कैसे चलता है? इंद्रियों से, पांव से चलते हैं, आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, ये सेनापति है, ये रक्षा करते हैं। बोला बहुत सी सेना क्या थी? बोला ऑल द मटेरियल डिजायर्स, ये बड़ी सेना थी। तो पुरंजन का पुरंजनी से विवाह हो गया। आत्मा ने बुद्धि से तदात्म्य कर लिया। तदात्म्य मीन्स ही आइडेंटिफाइड विद द इंटेलिजेंस। इसलिए कहते हैं इंटेलिजेंस इज नेक्स्ट डोर नेबर ऑफ द सोल। बुद्धि आत्मा का निकट का पड़ोसी है। अब एक बात यहां करें, एक बुद्धि पुरंजनी है, पुरंजनी है जो जीवात्मा उसको अपनी पत्नी बनाता है। एक सती मति होती है, मति कहते हैं बुद्धि को। अच्छा, बुद्धि के नाम चार आप सुन लो, अभी आपको कुछ अच्छी तरह से समझ में आए तो आपको कहा जाएगा बुद्धिमान हो, आपकी बुद्धि हो गई, प्रेजेंट में बुद्धि कहते हैं। अगर पुरानी बातें आपको याद है तो कहते हैं स्मृति अच्छी है, बुद्धि का नाम पास्ट में अगर बुद्धि होगी तो उसका नाम है स्मृति। ये अंग्रेजी में वर्ड नहीं है इसके लिए, ये संस्कृत की गहराई है। और फ्यूचर में आपने कोई मत बना लिया, मत का मतलब है आपके यहां इलेक्शन होती है ना, उसको वोट देते हैं ना, उसको मतदान बोलते हैं हिंदी में। मैंने फ्यूचर में आपने किसी को पसंद किया उसको बोलते हैं मति। तो वो बुद्धि जो फ्यूचर में भगवान को ग्रहण करे उसको कहते हैं मति। भीष्म पितामह प्रार्थना करते कहते हैं इति मति उपकल्पिता वित्रषणा भूमने, हे भगवान श्री कृष्ण, ये मेरी बुद्धि जो है ना इसने आपको पसंद किया है, ये मेरी सती मति है। आप भगवान श्री कृष्ण इस बुद्धि को कबूल कर लीजिए, स्वीकार कीजिए। गायत्री मंत्र में क्या पढ़ते हैं? वद्वरेण्यम धीमही, धीमही का मतलब हमारी बुद्धि, धी का मतलब बुद्धि, मही का धी मही मतलब मेरी बुद्धि, और वरेण्यम का मतलब भगवान आपका वरण करे। वरण करे का मतलब है वर कहते हैं पति को, विवाह में ना जो लड़का होता है उसको कहते हैं वर, और लड़की को बोलते हैं वधू। वधू लड़की वर करे, वो जो माला पहनाते उसका नाम होता है वर माला। इसका मतलब पति को माला पहनाई जाए, इसका मतलब हमारी बुद्धि को भगवान को वरण करना चाहिए, भगवान को अपना पति स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जब बुद्धि आत्मा को पति को स्वीकार करती है तो क्या होता है, ये नारद जी बताते हैं। अब दो प्रकार की बुद्धि समझ में आ गई, एक बुद्धि आत्मा से अपना आत्मा को पति मानता है वो पुरंजनी है, और एक सती मती होती है जो भगवान को अपना स्वामी मानती है वो आनंद और सुख भोगती। दो प्रकार की बुद्धि होगी। भागवत में उस बुद्धि को कहते हैं सती मती। सती मतलब वो स्त्री जिसने अपने पति के अलावा और किसी से कोई रिश्ता नहीं रखती है उसको कहते हैं सती। तो पुरंजन, अब शादी हो गई पुरंजनी के साथ। एक और भी कथा आपको बता देता हूं, थोड़ा इस कथा को आगे बढ़ाने से पहले। राजा की थी रानी, राजा के महल के सामने एक बहुत बड़े ज्वेलर का घर था, डायमंड का व्यापारी था। ज्वेलर जानते हैं, ज्वारी जिससे आभूषण खरीदते हैं, ज्वेलरी। वो बड़ा सुंदर था ज्वेलर। रानी के मन में उसके लिए काम वासना उत्पन्न हो गई। तो राजा तो अपने राजकाज में चला गया, रानी ने कहा इस ज्वेलर को कहो आ जाए हमारे घर में, कुछ हमको ज्वेलरी खरीदनी है, कुछ आभूषण खरीदने हैं। तो वो तो बेचारा सामान लेके आ गया, बोला ये ले लीजिए रानी साहब। वो तो सामान नहीं देखे, वो उसको देख रही है। उसके मन में काम का भाव था। उस दिन राजा को क्या हुआ कि राज में गया, कुछ क्या हुआ, पेट खराब हो गया, उसको जल्दी घर आना पड़ गया। और राजा का बाहर आया तो चौकीदार ने कहा राजा आज पधार रहे हैं, तो रानी के मन में तो काम वाला डर था ना कि ये मैंने मंगाया है तो मैं महाराज को कहती तो मेरे को सब लेके देते, तो उसने कहा तुम छुप जाओ। बोला कहां छुपूं, तो उसने कहा पुराने जमाने में टॉयलेट कैसे होते थे, एक एक बड़ा खड्डा बनाते थे और ईंटे से ऊपर ऊपर एक होल बना देते थे, उसके नीचे खड्डे में बोला तुम छुप जाओ टॉयलेट में, राजा नीचे तो नहीं देखने जाएगा, तो जाके खाली पड़ा है टॉयलेट साफ है जाके अंदर बैठ जाओ। यह भी बेचारा डर मारा कि राजा आएगा तो मार देगा, वो जाके टॉयलेट में छुप गया। राजा सीधा टॉयलेट गया, वो तो आया उसको तो पेट खराब था बेचारे, और एक बार नहीं तीन बार गया, और ये बेचारा नीचे इसका क्या हाल हो गया आप समझ लो। राजा नहा धो के अपने घर गया, ये बाहर निकला, रानी ने कहा तुम नहा लो, बेचारा नहाया अपना उठाया जेवर और भागा। दूसरे दिन रानी ने फिर कहा कि आओ जेवर देखने, बोला मेरे को टॉयलेट के नीचे नहीं बैठना, मैं नहीं आऊंगा। तो बोला ये क्या है कथा क्या है, बोला ये बुद्धि है रानी, ये हमारी बुद्धि है ना, ये है रानी, असल में राजा है भगवान, लेकिन वो ज्वेलर को, वो जो सोना चांदी बेचता है ना ऐसे जो अच्छा, उसको कहती है आओ आओ, तो वो जब आता है ना तो उसको फिर कहां छुपना पड़ता है, बोला मां के गर्भ में जाके उल्टा लटकना पड़ता है, उधर भी तो ऐसे ही चारों ओर यूरिन और स्टूल पड़ा होता है, मल मूत्र के बीच में उल्टा लटकना पड़ता है, ये सब हमारी कहानी है, हम ही सब उल्टे लटके हुए हैं इस दुनिया में, आए तो कैसे आए हैं हम, ये दुख का पता लगे तो इस दुनिया में हम ऐसे आए हैं जैसे उस बिचारे को टॉयलेट में जाके लटकना पड़ा था। इसको कहते हैं वो बुद्धि जो आत्मा को पति मानने का मूर्खता करके आइडेंटिफिकेशन, बॉडीली आइडेंटिफिकेशन, इसका मतलब है बॉडीली आइडेंटिफिकेशन। सो नारद जी कहते हैं उसके बाद पुरन जन उस पुर में इतना खुश है, कभी आंख के दरवाजे से फिल्म देखने चला जाए, कभी कान के दरवाजे से गाना सुनने चला जाए, कब मुख के दरवाजे से पिज्जा खाने चला जाए, ये सब दरवाजे हैं जिससे घूमने जाया जाता है ऐसे लिखाया है। और एक दिन पुरंजन देर से आया तो पुरंजनी बहुत नाराज हो गई, घर में झगड़ा हो गया, तो बुद्धि कहती है दुनिया में और आत्मा कहता है भगवान के भजन करेंगे तो झगड़ा हो गया। अब दूसरी कथा नारद बताते हुए कहते एक और राजा था, उस राजा का नाम था काल यवन, उसकी एक बेटी थी जरा, उसने पुरंजन को कहा तुमसे शादी करूंगी, पुरंजन ने कहा मैं शादी नहीं करूंगा, तो उसने अपने बाप को कहा ये पुरंजन मुझसे शादी नहीं कर रहा है, उसने कहा तेरे को 360 काले और 360 तो किरियोल वाले सैनिक देता हूं काले, और 360 जो है गोरे सैनिक देता हूं फ्रेंच, तुम जाके पुरंजन के सिटी के ऊपर नगर के ऊपर आक्रमण करो, यू गो एंड ये तुम सेना लेके जाओ, और तुम्हारे को सेनापति देता हूं उसका नाम है भय, तुम जाके पुरंजन के शरीर के ऊपर पुरंजन के पुर के ऊपर अटैक करो आक्रमण करो। बोला ये क्या है नारद जी, बोला काल यवन है राजा, काल यवन राजा कौन है, बोला टाइम समय, उसकी बेटी का नाम है जरा का मतलब बुढ़ापा, बुढ़ापा सबको कहता है कि तुमसे शादी करनी है और कोई बुढ़ापे से शादी नहीं करना चाहता, बुढ़ापा आता है जरा आती है कि भाई मुझे कबूल करो, नहीं 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 तुम नहीं चाहिए, बुढ़ापा आ जाता है कान में दो बाल सफेद होते हैं, बुढ़ापा कहता है मैं आ गया, कान के पास ही आके कहता है जागो अब सब काम छोड़ो भगवान का भजन करो, हम कहते हैं तुम रुको, काला रंग लगा देते हैं, यू शू भाग जा बुढ़ापा। तो जरा सबसे शादी करनी चाहती है और कोई नहीं करना चाहता, ये नारद कह रहा है। टाइम पास करने के लिए नहीं है, बहुत बड़ा विज्ञान है, बड़ी बड़ा साइंस है। बोला उसकी बेटी जरा सबसे शादी कोई नहीं करना है, तो काल क्या करता है, 360 दिन और 360 रातें, काले सैनिक हैं रातें और गोरे सैनिक हैं दिन, और भय डेथ का, मौत का भय ये देके कहता है जाओ पुरंजन के ऊपर जाओ अटैक करो। तो फिर बुढ़ापा, दिन रात हमारे दिन में क्या होता है, पहले तो हमारे ये जो सेनापति आंख है वो भी होशियार रहती है, लेकिन बुढ़ापा आता है तो आंख से देखते कम है, कान से सुनते कम है, नाक से सूंघने को नहीं रहता है, दांत गिर जाते हैं। तो ये सारे हमारे जो रक्षक है, जो हमारे को प्रोटेक्शन देते हैं, वो कमजोर पड़ते हैं। जरा के सेना से काल यवन की ये कमजोर पड़ने लगे, तो पांच फन वाला सांप थोड़ी देर के लिए प्रयास बहुत किया बचाने का, सांस ने, फिर सांस फूलने लगा, चलने से सांस फूलने लगा, घुटनों में दर्द होने लगा, ये सारे सैनिक कमजोर पड़ गए, हाथ खाते हुए हाथ ऐसे होने लगा, अब रोटी यहां ले जाए मुंह में तो चली जाए नाक के पास, तो ये सब हो गया, कमजोर हो गया। बोला फिर एक और सैनिक उसको दे दिया ज्वर, ज्वर कहते हैं आखिरी बुखार को, और वो आया और पुरंजन मर रहा था तो पुरंजनी को याद कर रहा था। तो दूसरे जन्म में पुरंजन इस लड़की बन गया, उसका नाम हो गया विदर्भी, और जो पुरंजनी थी वो अपने पति का ध्यान कर रही थी, उसको वो हो गया लड़का, उसका नाम हो गया मलिया ध्वज, और इन दोनों का फिर शादी हो गया। इससे एक बात भागवत में सिद्धांत होता है, अंत समय लड़की का ध्यान करता हुआ मरेगा तो लड़की को शरीर मिलेगा, और लड़के का ध्यान हुआ, लड़की कोई लड़के का ध्यान करती हुई मरेगी तो लड़का बनेगी, और लड़का कोई लड़की का ध्यान करता हुआ मरेगा तो लड़की बनेगी। इसका मतलब जो अभी स्त्रियां हैं वो पहले पुरुष थे, जो पहले पुरुष हैं अभी वो पहले स्त्रियां थी, ये बदल गया ऐसा, ये सीधा भागवत का, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। तो सिद्धांत क्या है कि कितना दुख है, बुढ़ापा सबको आता है ना, ये दिन रात हमारी आयु को ले जा रहे हैं, पता लग रहा है। ये मत समझना कि ये घड़ी टिक टिक कर रही है, ये टिक टिक नहीं है, ये तुम्हारे शरीर के ऊपर कुल्हाड़े का वार है, जैसे पेड़ को कुल्हाड़े से काटते हैं ना, ये दिन रात की घड़ी का टिक टिक गाफिल, ये पारसी में कहावत है, गाफिल ये घड़ी देती है तुम्हें मना दी, गर्दू ने घड़ी एक उम्र की और घटा दी। ये तुम्हारी घड़ी के अंदर जो चल रहा है ना सेकंड का सुई, ये घड़ी नहीं चल रही है, ये हमारी उम्र कट रही है, ये हमारी उम्र कट रही है, ये दिन रात में आयु जा रही है। दिन, सुखदेव कहते हैं, दिन सारा पागलपन पैसे कमाने के लिए लोग भागा दौड़ी करते हैं, और रात को या तो मुर्दे की तरह सोए होते हैं नहीं तो भोग करते हैं, कब ये भगवान का भजन करेंगे। बचपन तो खेल कूद में चला गया, जवानी मस्ती में चली गई, बुढ़ापे में तो बहुत सुस्ती आ जाएगी, तो भगवान का भजन कब करेंगे, कब करेंगे भगवान का भजन। तो पुरंजन का दूसरा जन्म हो गया, पुरंजन हो गया लड़की और पुरंजनी हो गया लड़का, विद्रभी और मलियाध्वज, और मलियाध्वज महाराज युद्ध में मर गया। तो विद्रभी रोने लगी, उस वक्त अज्ञात मित्र परमात्मा सामने खड़ा होके कह रहा है तुम न लड़का हो न लड़की हो, तुम पहले पुरंजन थे अभी तुम विदर्भी बन गए, ऐसे तुमने कई जन्म बदले हैं, तुम्हारा मैं मित्र तुम्हारे साथ हूं, तुम मेरी तरफ नहीं देखते हो इसलिए तुम दुखी हो, तुम संसार में मेरी ओर नहीं देख रहे हो इसलिए दुखी हो। और ये परमात्मा ने जब बताया तो पुरंजनी को ध्यान आया, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो भगवान का अंश हूं, मुझे तो भगवान की सेवा करनी चाहिए। जो जिसका अंश होता है उसी के पास जाने से सुखी होगा, ये दुनिया का नियम है। हम भगवान के अंश हैं। भगवत गीता में भगवान कहते मम इव अंश जीव लोके जीव भूत सनातन, ये सारे जीव मेरा अंश है। जिसके हम अंश हैं उसी के पास जाएंगे तभी सुखी होंगे। एग्जाम्पल क्या दिया, बोला कोई पत्थर उठाओ धरती से, उसको कहीं भी फेंको घूम फिर के धरती पे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, क्यों आएगा, धरती का अंश है, पत्थर है धरती का अंश, कहीं भी फेंको वापस धरती पे आएगा। आग जलाओ ऊपर जाएगी, कहीं भी आग जलाओ ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी? हाँ, दिया जलाओ कहां जाती है लाइट, उसके आग कहां जाएगी, क्यों ऊपर जाती है, सूर्य का अंश है। पानी कहीं भी डालो कहां जाएगा, लामिया समुद्र में जाएगा, जाएगा ना, पानी समुद्र से आता है समुद्र में जाएगा। तो जो चीज जहां से आती है वहीं जाएगी तभी सुखी होगी। तो जीव आत्मा भगवान का अंश है, भगवान की भक्ति करेगा तभी सुखी होगा। इसलिए भगवान ने कह दिया कि ये जो चार आप लोग समझदार हो, अब हम आपसे कहते हैं आप इन चार में से एक में आ जाओ, या तो ब्राह्मण बन जाओ। ब्राह्मण कैसे बने, बोला जीवन को बहुत सिंपल बचा बनाओ और विचार ऊंचे रखो तो ब्राह्मण बन जाओगे। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, बोला सिंपल लिविंग का क्या फायदा होगा, सादे जीवन से क्या लाभ होगा, हमें कुछ ज्यादा चाहिए नहीं तो माया हमको पकड़ेगी नहीं। सिंपल लिविंग से वी विल बी फ्री फ्रॉम दी कल्चर्स ऑफ दी माया। भगवान की बाहर अंग शक्ति हमको पकड़ेगी नहीं, हमको चाहिए नहीं वो क्या करेगी, वो तो हमको पकड़ती कैसे है, वो ये भी चाहिए ये भी चाहिए, तब हम उसमें फंस जाते हैं। तो सिंपल लिविंग सादे जीवन से बाहरंग शक्ति के प्रभाव से बच जाते हैं। बोला ऊंच विचार से क्या है, बोला ऊंचा तो भगवान है और कोई तो उससे ऊंचा है नहीं, न परत्रम मास्ति धनंजय, हे अर्जुन मेरे से ऊपर कुछ नहीं है। तो भगवान का विचार करेंगे तो क्या होगा, भगवान की अंतरंग शक्ति के संरक्षण में आ जाएंगे। Then we will come under the protection of divine energy. तो ऊंच विचार राधा रानी के शरण में जाने का रास्ता है और सादा जीवन माया से मुक्त होना है। ये दो शब्द हैं, इसकी माना ये है, इफ यू लिव सिंपली यू विल बी फ्री फ्रॉम माया, इफ यू थिंक हाई देन यू विल बी कनेक्टेड टू कृष्णा थ्रू डिवाइन एनर्जी। महात्मा नस्तुपाम पारद देवीम प्रकृतिम आश्रिता, मे महात्मा मेरी अंतरंग शक्ति हलादिनी शक्ति के संरक्षण संरक्षण में होते हैं। तो महात्मा बन जाओ, ब्राह्मण बन जाओ। प्रभुपाद ने तो कहा मैं आया ही हूं आपको ब्राह्मण बनाने के लिए। किसको कहा, अमेरिका के लोगों को कहा आओ आपको ब्राह्मण बनाऊं। कैसे, बोला शिक्षा देकर दीक्षा देकर मैं आपको ब्राह्मण बनाने आया हूं। क्योंकि सुख ब्राह्मण के जीवन में है, क्योंकि वो जानता है कि सदा रहने वाला जगह नहीं है, इसलिए ज्यादा उसका समय भगवान को जानने के लिए लगता है, संसार के काम में कम लगता है, भगवान को जानने के लिए ज्यादा काम करता है और दूसरों को भी भगवान की तरफ ले जाता है। पुण्य बने कैसे, जीवन पुण्य, ये कथा कर रहे ये आप पुण्य बन रहे हो, ये स्वकथा कृष्ण भगवत गीता सुन रहे हो, ये आपके जीवन में पुण्य हो रहे हो। बोला भक्त कैसे बने, इसलिए हम एक बात कहते हैं भगवत गीता में उपदेश बहुत है, उपदेश समझते हैं ना, उपदेश, उपदेश का अर्थ आता है इंस्ट्रक्शंस, उपदेश का मतलब इंस्ट्रक्शंस आर मेनी इन भगवत गीता। आदेश एक है, आदेश मंत्र, आदेश का मतलब क्या, ऑर्डर, देयर इज वन ऑर्डर बट मेनी इंस्ट्रक्शन। ऑर्डर क्या है, आदेश क्या है, भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। भगवान ने कहा मेरे भक्त बनो। आपको आश्चर्य लगेगा, भगवत गीता का अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ोगे तो लिखा है ज्ञानी बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत जन्मों के बाद मुझे पाप प्राप्त करता है। योगी के लिखा लिए लिखा है अनेक जन्म संसिद्धम, बहुत से जन्मों के बाद पवित्र होके मुझे प्राप्त करता है। और भक्त के लिए क्या लिखा है, समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचरात पारत मई आवेश चेतसम, जिसका चित्त मुझ में आविष्ट है उमें तत्काल इमीडिएटली आई विल टेक हिम, पर्सनली आऊंगा मृत्यु संसार सागर से निकाल लूंगा, देर नहीं लगाऊंगा। उसमें कई जन्म है और इसमें कुछ देर नहीं है। तो भक्त बनना चाहिए, राज ऋषि तो हम तो नहीं हो सकते। हमारा राज क्या है, हमारा तो घर का ही राज नहीं चलता है तो दुनिया कहां से चलाएंगे। राज ऋषि तो अर्जुन था, हमको बनना चाहिए भक्त। और उसके लिए पुण्य जीवन के लिए हरि कथा सुननी चाहिए। तब भगवान क्या कहते हैं, ऐसे जो बनेंगे उसकी बुद्धि क्या कहेगी, भजस्व माम। कृष्ण कहते हैं वो मेरा भजन करेंगे, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो मेरा भजन करेंगे, वो मेरा भजन करेंगे मतलब मेरी सेवा करेंगे। अब अर्जुन ने अगर मानो पूछ लिया कि भगवान वो आपका भजन कैसे करेंगे, तो भगवान ने ये श्लोक कह दिया, बोलो, मन मना भाव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरो माम एव यस्यसि युक्त वैवम आत्मानम मत प्रायणः मत प्रायणः, मेरे प्रायण होके मेरी भक्ति में लगकर। ये इसको कहते हैं 4-point program ऑफ श्री कृष्ण, 4-point program है, 4-sutri program है। मन मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। मन किसने भगवान में लगाया, कुछ कोई पूछे तो इसका एग्जाम्पल कौन है, इसका एग्जाम्पल है वृंदावन की गोपियां जिन्होंने अपना मन भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। ये है मन मना, मन उनका हमेशा कृष्ण के अलावा और किसी का नहीं सोचता। उद्धव ने कहा तुम मन से ध्यान करो, बोला मन है ही एक, वो तो कृष्ण को दे दिया, दूसरा कहां से लाए उद्धव, दूसरा है ही नहीं। तो मन मना का उदाहरण कौन है, बोला गोपियां हैं। दूसरा मन मना का उदाहरण कौन है, रूप गोस्वामी। श्री चैतन्य मनो अभीष्टम स्त पिताम ये न भूतले, श्री भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के मन के अभीष्ट को जान गया। तो भगवान के मन को जानने वाला मन मना है। तो भगवान के मन को जानने के लिए भगवत गीता में भगवान ने अपने मन की बात खुल के कैसे कह दिया कि जो मेरे इस भगवत गीता को श्रद्धालुओं में प्रचार करेगा वो मुझे बहुत प्रिय है। ये भगवान के मन की बात है, जो ये कार्य करता है वो मन मना है। प्रभुपाद जी मन मना है, जिनका मन भगवान के प्रचार में लगा हुआ है और कोई उद्देश्य नहीं है जीवन का, मन मना है। बैठे थे न्यूयॉर्क में और कहते हैं भक्तों को, मैं आप समझते हो न्यूयॉर्क में नहीं, मैं वृंदावन में हूं। प्रभुपाद आप वृंदावन में कैसे हैं, बोला ये चेतना है, वृंदावन इज कॉन्शियसनेस इज नॉट फिजिकल। वृंदावन का मतलब हर समय कृष्ण की सेवा का सोचना, हाउ टू प्लीज कृष्णा। हर एक व्यक्ति वृंदावन में गाय है, ग्वाल है, गोप है, गोपी है, दे वांट टू प्लीज कृष्णा, बस और कोई नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूं प्रभुपाद, मैं आई एम ओनली थिंकिंग ऑफ हाउ टू स्प्रेड कृष्ण कॉन्शियसनेस इज ए वृंदावन कॉन्शियसनेस। मन मना भाव मत भक्तो मेरे भक्त बनो। बोला आपके भक्त कैसे होते हैं, रात हम कथा कर रहे थे भक्त कैसे होते हैं, मच्चिद मदगत प्राण बोधयंत परस्परम कथ्यंतश्च माम नित्यम तुष्यंति चरमंत जी। मेरे भक्त की पहचान चाहिए आपको तो मच्चित्ता होते हैं। ये मन मना वो मच्चित्ता एक ही बात है, मन मना और मच्चित्ता में कोई अंतर नहीं है। वहां चित्त है या मन है, दोनों एक ही है। चित्त का मतलब होता है कॉन्शियसनेस, चित्ता मीन्स कॉन्शियसनेस। एक और उसका अर्थ है मत चित्ता, मन मना, जो मन में मुझे विराजमान करते हैं। एक चित्र का, चित्र से चित्र का अर्थ हम लेते हैं कभी, जैसे ये फोटो पड़े है ना, ऊपर फोटो है, इसको चित्र कहते हैं। जिसके मन में मेरा फोटो सदा लगा हो, भगवान कहते हैं जिसकी दिल में मेरा फोटो लगा है वो मन मना है। अब ऐसा मन मना कौन है? हनुमान जी। छाती खोल के सीताराम दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया? ये हुआ मन मना। जिसके हृदय में खोल के देखो तो भगवान दिखाई दे, ऐसे राधा रानी का हॉट मिल्क पास टाइम आपने कभी सुना होगा। 100 साल तक भगवान श्री कृष्ण का ब्रजवासियों से, गोपियों से जुदाई, सेपरेशन रहा 100 ईयर्स। 11 साल में भगवान वृंदावन छोड़ के चले गए और मथुरा में रहे 16-17 साल, फिर 100 साल तक रहे जाके द्वारका में। तो 100 साल के बाद, आफ्टर 100 ईयर्स, एक स्थान है गुजरात में, उसको कहते हैं बिंदु सरोवर, सिद्धपुर में, वहां राधा कृष्ण का दोबारा मिलन हुआ और वहां भगवान श्री कृष्ण अपनी सारी रानियों के साथ आए थे, रुक्मणी सत्यभामा सब आए थे और सारी गोपियां वहां गई थी। इसलिए गई थी कि राधा रानी ने सुना कि एक ऐसा जगह है बिंदु सरोवर, उसमें जो स्नान करेगा वो एकदम भगवान श्री कृष्ण से मिल जाएगा, उसको कृष्ण का सेपरेशन नहीं होगा, जुदाई होगी नहीं। राधा रानी ने कहा चलो उधर चलते हैं। राधा रानी नहा रही थी, सरोवर में थी, तब तक भगवान श्री कृष्ण ने बुला लिया कि राधा को बुलाओ। राधा कृष्ण का मिलन हुआ, राधा ने कृष्ण की पूजा किया, रानियां आश्चर्यचकित हो गई, देखती रह गई उनके प्रेम के भाव को। फिर राधा रानी की बहुत सेवा करके रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण के कमरे में गई तो भगवान जाग रहे थे। बोला अभी द्वारकाधीश आप सोए नहीं? बोला राधा रानी को नींद नहीं आई है तो मैं कैसे सोऊंगा। बोला मैं अभी सुला के आई हूं। बोला नहीं, वो गाय का गर्म दूध पिएगी तब उसको नींद आएगी। बोला वो तो नहीं दिया है। तो भागती हुई गई और रुक्मणी ने बहुत सुंदर गाय का दूध मंगाया, गर्म किया, केसर डाला, कस्तूरी डाला और मिश्री डाला और फिर चांदी के कटोरे में राधा रानी को दिया और देकर वापस आई। आके देखती है भगवान श्री कृष्ण के चरणों को दबाने लगी, मसाजिंग दी फीट, पांव के ऊपर जले हुए इतने बड़े बड़े ब्लिस्टर पड़े थे, फफूंदे हो गए। रुक्मणी कहती है आप गए नहीं कहीं पति देव, ये कैसे जल गया? बोला रुक्मणी तुमने बहुत गर्म दूध राधा रानी को दिया, उसके हृदय में मेरे चरण कमल रहते हैं और उस गर्म दूध से ये जल गए। ये मन मना की परिभाषा है, मच्चित्ता की परिभाषा है। जिसके हृदय में भगवान के चरण है, जिसके हृदय में भगवान विराजमान है, जैसे हनुमान ने दिखाया, इसको बोलते हैं मन मना। मदगत प्राण, अगर मैं नहीं रहूंगा तो प्राण निकल जाएंगे, मैं नहीं मिलूंगा तो प्राण निकल जाएंगे, ये मेरे भक्त की पहचान है। दशरथ महाराज ऐसे भक्त है, राम जी वापस नहीं आए, प्राण निकल गए, जीऊं किसके लिए जीऊं। पांडव ऐसे भक्त हैं, जिस दिन पता लगा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने कहा कि अपने धाम चले गए हैं, महाराज युधिष्ठिर का ये राजपाट नहीं करना है, हम जाएंगे उत्तर दिशा में, और वो राजपाट छोड़ के चले गए। भीमसेन ने कहा मैं भी नहीं करूंगा, और नकुल से पांचों भाई निकल के रवाना हुए, नहीं चाहिए हमको राज। और कुंती महारानी ऐसी है जिसने सुना तो प्राण ही निकल गए। ये भक्तों की परिभाषा है। ऐसे भक्त, बोला जीते कैसे है भक्त, हम सब भक्त हैं, जीते कैसे? बोला बोधयंत परस्परम कथ्यंतश्च माम नित्यम, ये कथा करते रहते हैं, ये कथा सुनते हैं, इसलिए लाइफ लाइन है उनकी। ये भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की कथा कीर्तन करते हैं, इसलिए जीवित है। The devotees are only surviving because of the lifeline of Sarvan and Kirtan. ये अगर नहीं है तो जीवन समाप्त हो जाएगा। मिलेगा क्या? तुष्यंति, दुख खत्म हो गया, नो मोर मिजरी, तुष्यंति रमंति, रमंति मीन्स दे आर वेरी हैप्पी। रमंति शब्द पता है किसको कहते हैं? राम, राम रमंति, रमंति ये बच्चे है ना, इनको जो आप खिलौने देते हो ना उसको संस्कृत में बोलते हैं रमण का। संस्कृत में जो ट्वाइज हैं जिसको आपकी भाषा में जूजू जूजू, हाँ जूजू जूजू जूजू, वो बच्चे को जूजू मिल जाए, खिलौना मिल जाए, तो मां को भी नहीं बाप को नहीं उसी में खुश हो जाता है ना। तो रमनते का मतलब उनको भगवान की कथा में इतना आनंद आता है कि उनको किसी की याद नहीं है, दुनिया का दुख उसको पता ही नहीं लगता है। दे आर सो एब्जॉर्ब्ड इन हरि कथा कीर्तन के उनको दुख का पता ही नहीं लगता है। रमनते का मतलब है उनको प्रेम की प्राप्ति हो जाए। जैसे बच्चों को कितना आनंद आता है खिलौना हाथ में आता है, तो राम शब्द का अर्थ ऐसा होता है जिसमें आनंद ही आनंद हो। तो संसार में दुख है लेकिन भगवान की भक्ति में सुख है। इसका मतलब नहीं है कि दुख आएगा नहीं, दुख भक्त को भी आएगा, लेकिन भक्त को भगवान के चरण पकड़े हुए हैं इसलिए दुख उसका कुछ बिगाड़ेगा नहीं। पांडवों को कितना दुख आया, 12 साल वनवास में बहुत भटकना पड़ा, लेकिन कभी दुखी नहीं हुए, हर समय कृष्ण साथ खड़ा है, जहां भी दुख आए भगवान साथ खड़ा है, तो उनको कभी दुख की परवाह ही नहीं रही। एक बार दुर्वासा ऋषि दुर्योधन के महल में आ गए, दुर्योधन ने बहुत सेवा की, दुर्योधन ने आशीर्वाद दिया, सुखी रहो महाराज। दुर्योधन ने कहा कि हमारे भाई पांडव इस वक्त वनवास में है, आप उनको भी कृपा करके उनके पास चले जाना, उनको भी आशीर्वाद देना। दुर्योधन के मन में क्या था कि उधर जाएंगे कुछ खिला के नहीं पाएंगे तो ये शराब दे देगा, अपने आप नाश हो जाएंगे। और कहा दुर्योधन ने, एक बात करना महाराज, आप जरा दोपहर के बाद जाना, क्योंकि सुबह उनका मॉर्निंग प्रोग्राम होता है कि सुबह को पांडव भगवान का भजन करते हैं, तो आप दोपहर के बाद जाना। दुर्वासा तो सचपच चला गया, काम्य वन में चला गया 10,000 शिशुओं को लेकर, और महाराज युधिष्ठिर को कहा कि महाराज हम भोजन करेंगे। युधिष्ठिर, आपका स्वागत है, आइए महाराज बैठिए। बोला हम गंगा जमुना स्नान करने जा रहे हैं, जमुना से स्नान करके लौट के आते हैं, फिर भोजन करेंगे। तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा, द्रौपदी ये महाराज 10,000 शिशुओं को लाया है, भोजन का बंदोबस्त करो। द्रौपदी ने कहा, दोपहर का हमने भोजन कर लिया, अभी जो मेरा ये पात्र है अक्षय पात्र, द्रौपदी के पास सूर्य देव का दिया हुआ अक्षय पात्र था, जब तक स्वयं द्रौपदी नहीं खा ले जितने भी लोग आए खिला सकती, उसका नाम ही अक्षय पात्र था, लेकिन द्रौपदी खा ले तो फिर शाम तक और दूसरे दिन मिलेगा, उससे पहले कुछ नहीं मिलेगा। द्रौपदी ने कहा, अब तो कुछ भी नहीं है, मैंने खा लिया, अब कैसे खिलाएंगे। बोला ये सब आ गए हैं और स्वामी को नहीं खिलाएंगे तो शराब दे देंगे। द्रौपदी कहती है, हे कृष्ण अब क्या करूं। तब तक कृष्ण भागता हुआ आ गया और आते ही बोला, द्रौपदी बहुत भूख लगी है, कृष्णा, द्रौपदी का नाम है कृष्णा, कृष्ण और कृष्णा, अर्जुन का नाम भी कृष्ण है, काला है रंग का सांवला है ना, उसको भी कृष्ण कहते हैं। द्रौपदी बहुत भूख लगी है। द्रौपदी बोले, तुम भी भूखे आए घर से, आ पहले महाराज के भोजन का प्रबंध नहीं हो रहा। बोला बहुत भूख लगी है द्रौपदी, कुछ तो होगा। बोला बर्तन धो के रखा, अब कुछ भी नहीं है। बोला लाओ बर्तन लाओ। अंदर ढूंढ के देखा तो एक चावल पड़ा था। बोला मेरे को दे दो खाऊं। भगवान ने कहा, मैं संतुष्ट जगत संतुष्ट। और जैसे भगवान ने खा के कहा ऐसे वो स्नान करते हुए दुर्वासा के शिष्य कहते हैं, गुरु जी पेट भर गया, कुछ खा नहीं पाएंगे। और भगवान श्री कृष्ण का भीमसेन, तुम भागते हुए जाओ गुरु जी को कहो, दुर्वासा आप आइए भोजन तैयार है। महाराज ने कहा, भोजन कहाँ है। बोला आप चिंता मत करो। अब भीमसेन उठा के गदा चला, महाराज भोजन तैयार है। वो शिष्य बोलते खा नहीं पाएंगे, 10,000 प्लेट का ऑर्डर दिया है, कैंसिल कैसे करेंगे, इतना बड़ा नुकसान हो जाए, अब क्या करें। गुरु जी ने कहा, तुम ऐसा धोती को थोड़ा ऊपर घुटने तक करके भागो यहां से, ये भीमसेन आ रहा है और ये अब रुक नहीं पाएंगे, मैं खड़ा हूं। और तो शिष्य तो भागे। और दुर्वासा कहते हैं, भीमसेन अभी हमारे को भूख नहीं है, वैसे ब्राह्मण को भोजन कराते हैं आशीर्वाद मिलने के लिए, तो मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आपका वनवास का समय सुख से गुजरेगा, आपको राजपाट मिलेगा, आपको आशीर्वाद दे दिया, आप तो ठीक है ना। भीमसेन ने कहा बहुत अच्छा, आपने कृपा की, आशीर्वाद दे दिया, प्रसाद तो तैयार है, चलते तो खा लेते। बोला अभी कभी दोबारा आएंगे। तो भीमसेन ने कहा एक और आशीर्वाद दे दो गुरु जी। बोला जो मांगो लेकिन भोजन नहीं करेंगे। बोला क्या आशीर्वाद चाहिए? बोला देखो मेरा नाम है भीम और मेरे पेट में है वृक अग्नि, मुझे वृकोदर कहते हैं, मैं 50 आदमी को खा जाता हूं, तो मैं खाता ज्यादा हूं ना, तो मेरे को टॉयलेट ज्यादा जाना पड़ता है सोच में, और हमारे को दुख देता है शकुनी, वो जो मामा शकुनी है ना दुर्योधन का, हमारे को बनवास दिया, वो सब चाल उसकी है, अब एक आप आशीर्वाद दो, खाऊं मैं और टॉयलेट जाए शकुनी। दुर्वासा ने कहा तथास्तु, ऐसे ही होगा। आया भीमसेन वापस, भीमसेन ने कहा भगवान श्री कृष्ण एक काम करो, हम तो बनवास में रहते हैं, मुझे 1 किलो लाल मिर्ची लाके दो, रेड चिली 1 किलो। बोला क्या करेगा? बोला मतलब घोट के आज पीनी है। बोला क्यों? बोला मैं पीऊंगा फिर देखो शकुनी का क्या हाल होता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो भक्त वनवास में होंगे तो भी भगवान वहां आके उनकी रक्षा करते हैं, तो भक्त को दुख भले आए लेकिन उसको दुख दिखाई नहीं देगा। बोला प्रहलाद महाराज कहते हैं तुम कहते हो ये पर्वत की चोटी है, मुझे तो ये मेरे अंगूठे से भी लगती छोटी है। तुम ऊपर से फेंक रहे हो ना, मेरे को लगता है अंगूठे के ऊपर से नीचे भगवान खड़ा है। तो भक्त को दुख नहीं है, संसार दुखमय है लेकिन भगवत उसके अंदर सुखी है क्योंकि भगवान का शरण लिया है। इसलिए भक्त बनिए महाप्रभु चैतन्य, भक्त बनने का सरल साधन लाए हैं। भक्ति शुरू होती है जीभा से, जबान से, और जीभा के दो काम है बोलना और चखना। इसलिए बोलने में हरि नाम बोलो और चखने में भगवान का प्रसाद खाओ। तो कृष्ण भावना अमृत संघ में कथा के बाद हम पहले कीर्तन कराते हैं तो भक्ति शुरू हो जाती है, फिर प्रसाद खिलाते हैं तो भक्ति पक्की हो जाती है। तो यहाँ भक्ति सिखाते हैं और भक्ति कराते हैं और अभ्यास कराते हैं, तो आप इसका सुख लीजिए। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है? तो आज की कथा क्या थी कि 4 प्रकार के लोग जो है वो भगवान कहते हैं, समझते हैं कि दुनिया सदा रहने वाली नहीं है और यहां दुख है, उसमें ब्राह्मण है, भक्त है, पुण्य आत्मा है, राज ऋषि है, इसके अलावा जो सारे हैं वो पागल है, मूर्ख है, दुनिया में सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, कभी सुखी नहीं होंगे, इसलिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी का? श्री प्रभुपाद की